ट्रैफिक जाम में फंसे होने की वजह से वैदेही के पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन उसे गाड़ी से बाहर निकलना ही पड़ा। बाहर राघवेंद्र का छोटा भाई मानव था। हेलो वैदेही जी, या आपको विद्या जी कहूँ, मानव ने उसके बाहर निकलते ही कहा। लिसन मानव, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। हम दोनों का छोड़ो, तुम तो अपने भाई को भी ठीक से नहीं जानते। बेहतर होगा तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, वैदेही ने जवाब दिया। बात अगर सिर्फ दादा तक जुड़ी रहती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप तो हमारे घर तक आ गई। मेरी आई और वहिनी तक आपको जानते हैं। आपको अपने प्रोफेशनल गर्जिस को हमारे घर तक नहीं लाना चाहिए था। मानव की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो वैदेही से काफी गुस्सा था। तुम चाहते क्या हो, वैदेही ने पूछा। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि आप क्या चाहती थी जो हमारे घर तक आ गई। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर आधे घंटे से ज्यादा टाइम से फंसी हुई हूँ। वो आपकी प्रॉब्लम है वैदेही जी, मुझे आपसे बात करनी है और वो मैं करके रहूंगा, मानव ने जिद की। वो अच्छे से जानता था कि वैदेही उसे फिर नहीं मिलने वाली थी। ठीक है, हम बाद में मिल सकते हैं, कहकर वैदेही गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन मानव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर जाने से रोका। ये क्या बदतमीजी है, वैदेही ने उसका हाथ झटका और गुस्से में जवाब दिया। मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, सच कहूँ तो मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ। हम दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम वापस इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। मानव किसी भी कीमत पर वैदेही को जाने नहीं देना चाहता था। उधर ट्रैफिक भी धीरे धीरे क्लियर होने लगा। मानव गाड़ी में ड्राइवर के साथ मौजूद था। उसने ड्राइवर को जाने का इशारा किया और खुद जबरदस्ती वैदेही की कार में बैठ गया। वैदेही के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने गाड़ी किसी कैफेटेरिया की तरफ बढ़ा ली। पूरे रास्ते वो दोनों चुपचाप थे। कैफेटेरिया आने के बाद दोनों ने एक कॉर्नर सीट पकड़ी और बैठकर बात करने लगे। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, वैदेही ने पूछा। आप हमारे घर पर विद्या सावंत बनकर क्यों आई थी? आप हमारे गांव में रह रही थी, वो भी इस तरह नकली पहचान के साथ? मुझे इन सब का कारण जानना है, वैदेही ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा। देखो मानव, हमें हमारे काम के लिए काफ़ी बार स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ता है। बस इसीलिए नया नाम, पहचान, गेटअप बदलना, ये सब हमारे काम का हिस्सा है। स्टिंग ऑपरेशन कुछ घंटों का होता है वैदेही मैम। आप मेरे गांव में काफ़ी दिनों से रह रही थी, इस बीच आप मेरे घर भी आईं और मेरे घर वालों से मिली। क्या आप मुझे बताएंगी कि ये स्टिंग ऑपरेशन किसके खिलाफ था? हमारा काम पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, वैदेही ने जवाब दिया। मानव उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। कहीं आपका वो सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन मेरे दादा के खिलाफ तो नहीं था? तुम इन सबसे दूर रहोगे, उसी में तुम्हारी भलाई है, कहकर वैदेही वहां से उठकर जाने लगी। मानव जल्दी से उठा और उसे रोकने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मानव, तुम एक अच्छे इंसान हो, इस तरह की हरकतें मत करो कि मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़े, वैदेही ने अपने गुस्से में काबू करके जवाब दिया। मेरे दादा भी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हारे दादा इतने ही अच्छे इंसान हैं तो जाकर उन्हीं से पूछो कि मैं वहां पर क्या कर रही थी। मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम बार बार पूछकर मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो, वैदेही मानव को इन सब से दूर रखना चाहती थी। वो उससे जितनी बार भी मिली थी, इन सब में उसने उसके बारे में यही जाना कि वो स्वभाव से काफी सीधा इंसान था। अगर दादा मुझे बता देते तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मानव ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे घर से दूर क्यों रखा जाता है। जब भी मैं यहाँ आने की बात करता था तो मुझे हमेशा ये बोलकर मना कर दिया जाता था कि इससे मेरी स्टडी डिस्टर्ब होगी। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, मानव की बातों से समझ आ रहा था कि उसे अपने घर की बातों के बारे में कुछ खास पता नहीं था। ऐसे में वैदेही भी उसे कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि जिस रिपोर्टर के मर्डर न्यूज आजकल कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है, उसका मर्डर तुम्हारे ही गांव में तुमसे जुड़े हुए किसी इंसान ने किया है। और क्या वो इंसान दादा है, मानव ने नम आंखों से पूछा। मुझे नहीं पता, वैदेही ने अपने जज्बातों को काबू करके जवाब दिया और तुरंत वहां से निकल गई। आप सब जानती हैं वैदेही जी, और मैं पता लगा कर रहूंगा, मानव ने खुद से कहा और वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल पड़ा। अगले दिन चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए देर रात तक महाराष्ट्र विकास पार्टी के ऑफिस में सभी पार्टी से जुड़े लोग इकट्ठा थे। सभी को कल आने वाले रिजल्ट का इंतजार था। राघवेंद्र और यशवर्धन भी यहां आमने सामने थे। वहां पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया। राघवेंद्र के हाथ में शराब का ग्लास था और वो यशवर्धन के पास आकर बोला, इस बार अपनी तरफ से खेलने के लिए खिलाड़ी काफी अच्छा चुना है तुमने, हम तुम्हारी चॉइस की दाद देते हैं यश, लगता है तुमने पहले से ही हार मान ली है, यशवर्धन ने मुस्कुराकर कहा। खेल में कभी भी एक खिलाड़ी जीत नहीं दिला सकता, तुम अगर वैदेही रघुवंशी के दम पर यह जंग जीतने की सोच रहे हो तो हंसी आती है हमें तुम पर, और हम ताश के इस खेल में इक्के को गायब कर देंगे तो क्या होगा, राघवेंद्र ने गुस्से में कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, यशवर्धन ने भी गुस्से में जवाब दिया।
तुम्हारा गुस्सा साफ बता रहा है कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। वैसे लड़की खूबसूरत है, तुम्हारी तरह स्टेटस भी काफी अच्छा है। मैं तो कहता हूँ दोनों इस राजनीति और रिपोर्टिंग का खेल छोड़ो और शादी करके घर बसाओ। सच कह रहे हैं, अगर तुमने हमारी बात मान ली तो शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। फिक्र मत करो, शादी काफी धूमधाम से होगी तुम दोनों की। राघवेंद्र यशवर्धन को रोकने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमा रहा था। जवाब में यशवर्धन हल्का सा हंसा और फिर बोला, आज राघवेंद्र प्रताप सिंह के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। तुम तो कभी किसी को सामने से ऑफर नहीं देते। लगता है वैदेही जी ने सच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला दिया है। अपनी बात कहकर यशवर्धन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राघवेंद्र गुस्से में घूरते हुए उसकी तरफ देख रहा था। ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। त्यागी जी ने वादा किया है कि वो रिपोर्टर के मामले को संभाल लेंगे। मैं भी देखता हूँ ये दोनों बिना सबूतों के क्या करते हैं, राघवेंद्र ने सोचा। पूरी पार्टी में राघवेंद्र और यशवर्धन एक दूसरे की तरफ घूर कर देख रहे थे। उनकी पार्टी देर रात तक चली। उसके बाद सुबह जल्दी राघवेंद्र अपने घर पर आ गया। सुबह के 3 बज रहे थे। उसके बावजूद मानव घर पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। अंदर आते ही राघवेंद्र ने लाइट चलाई तो सामने मानव दिखाई दिया। तुम अभी तक सोए नहीं मन्नू, उसने उसके पास बैठते हुए पूछा। क्या करूं दादा, मन में इतने सवाल चल रहे हैं कि चैन से बैठने तक नहीं दे रहे, तो नींद कहां से लेने देंगे, मानव ने भावुक होकर कहा। तुम्हारी आंखों में पानी, किसी ने कुछ कहा क्या? मानव की आंखों में पानी देखकर राघवेंद्र बुरी तरह बौखला गया। मानव ने नासिर हिलाते हुए कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी की इतनी मजाल भी कहा कि वो राघवेंद्र प्रताप सिंह के भाई को कुछ कह सके, राघवेंद्र गर्व भरी आवाज में बोला। अच्छा बताओ कोई लड़की का चक्कर है, तुम एक बार नाम लेकर देखो, मैं कल ही तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। लड़के इस तरह रोते हुए अच्छे नहीं लगते। रोती हुई तो लड़कियां भी अच्छी नहीं लगती दादा, हमारे चेहरे की सुंदरता तभी बढ़ती है जब इस पर मुस्कान हो। हाँ सही कहा तुमने, अब बता क्या बात है जो तेरी आंखें भर आई है।
मैं तो आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन क्या आप सच 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 बता पाएंगे, मानव के पूछने पर राघवेंद्र सकपका गया। मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है जो अब बोलूंगा, राघवेंद्र ने नकली हंसी के साथ कहा। आप वैदेही से गुस्सा क्यों हैं, और आपके माइंड में ये कैसे आया कि वैदेही अपना गेटअप बदलकर हमारे बीच रह सकती है? मानव की बात सुनकर राघवेंद्र हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। और तुम्हें ये सब किसने कहा, उसने पूछा। दादा मैंने आपसे सवाल पूछा है, आपको उसका जवाब देना है, ना कि सवाल के बदले एक और सवाल खड़ा करना है। मुझे मेरे कुछ आदमियों से खबर मिली थी कि वैदेही रघुवंशी गांव में आई हुई है, साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उसकी जान को खतरा है। वो हमारे घर पर इंटरव्यू लेने आई थी। तू तो जानता ही है ना, हमारे घर वालों को एक बार किसी से मिल लेते हैं तो उसके साथ रिश्ता सा बन जाता है। मैंने अपने आदमियों के जरिए वैदेही को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। लल्लन ने बताया था कि वो एक औरत से मिला था जो कि वैदेही जैसी लगती थी। बस उसी हिसाब से मैंने तुम्हें वैदेही के मेकअप वगैरह करके उसकी फोटो एडिट करने के लिए दिया था, राघवेंद्र ने एक सांस में उसे पूरी बात बता दिया। मानव समझ नहीं पा रहा था कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच। वो इन सब में उलझ कर रह गया था, लेकिन राघवेंद्र के बारे में सोचकर उसकी आंखें छलक पड़ी। उसने राघवेंद्र को गले लगाया और कहा, मैं जानता था कि मेरे दादा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। हाँ, राघवेंद्र ने प्यार से उसकी पीठ को सहलाया और बोला, अब इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। वो क्या कहा था तुमने, कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो तभी इसकी शोभा बढ़ती है। मानव ने जल्दी से अपने आंसू पूछे और राघवेंद्र से अलग हुआ। कल हमारा पूरा परिवार यहाँ आ जाएगा, देखना मेरे CM बनने के बाद मैं सबको यहीं पर सेटल कर लूंगा। आरती बहनी तो कब से मुंबई में रहना चाहती थी। हाँ, आई को थोड़ा मनाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें अपना गाँव छोड़ना पसंद नहीं है। मानव का ध्यान भटकाने के लिए राघवेंद्र ने बातों का रुख बदला। मानव ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, कल से बहुत काम होने वाला है दादा, आपको आराम करना चाहिए, मैं भी सोने जा रहा था। राघवेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बालों में हाथ फेरकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसने मानव के सामने झूठ बोल दिया था, लेकिन उसका मन अभी भी विचलित था। कमरे में आते ही राघवेंद्र परेशान होकर अपने बेड पर बैठा सोच रहा था, कहीं मानव यहाँ मुंबई में वैदेही से तो नहीं मिल लिया, और वैदेही नहीं उसके दिमाग में ये सब जहर भरा होगा। ये तुमने सही नहीं किया वैदेही रघुवंशी, मैंने तुम्हारे सामने चैलेंज रखा था, सोचा था कि तुम हर काम ईमानदारी से करती हो, इसीलिए इस चुनौती को भी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करोगी, लेकिन मेरे भाई को इसमें सब में डालकर तुमने अच्छा नहीं किया। पहले मैंने तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनने का नहीं सोचा था, अब मैं तुम्हारे रास्ते में इतने कांटे बिछा दूंगी कि तुम एक कदम भी नहीं उठा पाओगी। राघवेंद्र काफी गुस्से में था। उसने उसी वक्त अपने आदमी को फोन किया और कहा, अब से 24 घंटे वैदेही रघुवंशी पर नजर रखो, वो कहाँ आती जाती है, किससे बात करती है, इसकी पल पल की खबर मेरे पास होनी चाहिए। कुछ भी संदेहजनक लगे तो उसी वक्त मुझे फोन करके बताओगे। सामने वाले व्यक्ति ने हाँ कहा और फिर फोन काट दिया। उस व्यक्ति को सारा काम सौंप कर राघवेंद्र सोने की कोशिश कर रहा था।